वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी।
इधर
कल हमने इसके पांचवें श्लोक को पढ़ा था, आज चौदहवें श्लोक को पढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितं प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपहो परमते परमेत योगात्। लिखा नहीं वहां। कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितं अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् व्यपोयो परमेत योगा। कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितं अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् व्यपोयो परमेत योगा। कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया सादितं अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् व्यपोयो परमेत योगा।
अनेन योगेन यथोपदेशम्
माता जी अवेद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्यपो यो परमेतयोगा कर्म आशयम् कर्म की आकांक्षा हृदय ग्रंथि हृदय में स्थित गांठ बंधन बंधन अविद्या अविद्या के कारण आसादितम लाई गई अप्रमत्तः अत्यंत सावधान जो मोहग्रस्त न हो अनेना इस योगेना योग अभ्यास से यथा उपदेशम जैसा उपदेश दिया गया सम्यक पूर्णतया व्यपोह मुक्त होकर ऊपर में विरत होना चाहिए योगा मुक्ति के साधन योगाभ्यास से अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा हे पुत्रों तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए अत्यंत सावधान रहना इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंध रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। तात्पर्य मुक्ति की क्रिया ब्रह्म जिज्ञासा है। सामान्यतः इसे नेति नेति कहते हैं जिसका अर्थ है वह क्रिया जिससे परम सत्य की खोज करने के लिए अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत अर्थात आत्म अनुभूति की स्थिति है। भगवद गीता के शब्दों में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है और न किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पराभक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य सेवा में प्रवेश करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है किंतु भक्ति में संलग्न रहने पर ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अविचलित भाव से मात्र भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा मुक्त अवस्था में रहेगा। भगवद गीता में कहा गया है माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविचल भाव से भक्ति करना स्वयं ही ब्रह्मभूत है। इसकी दूसरी विशेषता है अनेन योगेन यथोपदेशम गुरु से प्राप्त उपदेशों का तुरंत पालन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों से तनिक भी विपत ना हो ना ही उनका उल्लंघन करे। उसे चाहिए कि ग्रंथों के अवलोकन में ही न लगा रहे वरन साथ ही साथ गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणत करे यथोपदेशम। भौतिक अनुभूति का परित्याग हो सके इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए किंतु यदि मनुष्य भक्ति योग में संलग्न हो जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। सच बात तो यह है कि योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक क्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूत गुणों हरि। जो आत्मा राम अर्थात मुक्त हैं उन्हें भी सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने पर योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है, किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। योग तथा दार्शनिक चिंतन समेत आत्म साक्षात्कार के अन्य कर्म त्यागे जा सकते हैं, किंतु भक्ति को तो सदैव बनाए रखना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे इस अध्याय पर चर्चा से पहले। सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोस्फुरा। हरे कृष्ण। पांचवा स्कंद जिसकी चर्चा कर रहे हैं ऋषभदेव की शिक्षाओं पर, कल थोड़ी बहुत चर्चा इस अध्याय पर हुई, आज उसको आगे करेंगे। कल हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे ऋषभदेव ने पहले तीन श्लोकों में मनुष्य जीवन के महत्व को समझाया कि मनुष्य जीवन किस लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्तम, अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए, तपस्या करने के लिए, स्वेच्छा से तपस्या को स्वीकार करना और वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। मनुष्य जीवन केवल इसीलिए बना है। और आगे उन्होंने वर्णन किया चौथे श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक कि कैसे जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, तो कैसे बारंबार उसको उन्होंने कारण दिए, अलग अलग कारण, जिनके द्वारा जीव को 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं जानता, जिज्ञासा नहीं करता, भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं करता। तो इन कारणों से उसे बारंबार 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। और फिर उन्होंने आगे ऐसे ज्ञान का वर्णन किया जो जिसमें भक्ति का थोड़ा सा स्पर्श है, भक्ति मिश्रित ज्ञान। और अब वो वर्णन कर रहे हैं 10वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक भक्ति की प्रक्रिया का, जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान का मिश्रण है, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या क्या नियम हैं, बहुत सुंदर तरीके से इस अध्याय में, जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा था, भागवत धर्म का वर्णन है, वो धर्म जो मुक्ति और कष्टों से परे जाने वाले धर्म के सिद्धांतों से ऊंचा है। तो अब इसमें भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका वर्णन है, और आगे चलकर जो लोग भक्ति करते हैं उनके क्या लक्षण हैं इसका वो वर्णन करेंगे, अर्थात भक्तों का। तो भक्तों के महत्व को इस अध्याय में प्रकट किया गया है। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति का प्रारंभ यही है। रूप गोस्वामी जब भक्ति के 64 अंगों को देते हैं तो वो भी वर्णन पहला यही करते हैं कि सबसे पहले गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना, ये भक्ति की प्रथम अवस्था है। सबसे पहले हमें, क्योंकि गुरु नहीं होंगे तो मार्गदर्शन नहीं होगा, गुरु नहीं होंगे तो हम भटक जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को गुरु स्वीकारना चाहिए। फिर साथ साथ इस जगत के जो द्वंद्व हैं उनको सहन करना सीखना चाहिए। कल हम बतला रहे थे कि जब हम गुरु के निर्देश में कार्य करते हैं तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहली है भक्ति, दूसरा है वैराग्य और तीसरा है सहनशीलता। तो वो कहते हैं कि गुरु को स्वीकार करना और द्वंद्वों को सहन करना सीखना चाहिए। द्वंद्व क्या हैं? सर्दी और गर्मी, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सबको हमें सहन करना सीखना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्य स्तांस्तिदीक्षस्व भारत। कि हे अर्जुन, तुम सहन करना सीखो किसको? ऐसी चीजों को जो मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा अर्थात इंद्रियां, तो ऐसी चीजें जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो क्या होता है? शीत उष्ण सुख दुख, इन सबको सहन करना चाहिए। जब ठंडी हो तो सहन करना है, गर्मी हो तो सहन करना है, इसी तरह जब सुख हो तो सहन करना है, दुख हो तो सहन करना है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि दुख सहन करने की बात तो सही है, सुख सहन करना कैसे होता? सुख तो कोई सहन नहीं करता, बड़ा आनंद में रहता है सुख में। तो भक्त के लिए सुख को भी सहन करना चाहिए। कैसे? जब बहुत ज़्यादा सुख हो जीवन में तो उसे उसमें बह नहीं जाना चाहिए। जैसे एक चींटी का उदाहरण है, चींटी जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत कार्य करती हैं। आप देखिए गर्मियों के समय आप कहीं पर भी थोड़ी सी कुछ मीठा रख दीजिए, चींटियाँ आ जाती हैं, फिर लेकर जाती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो सारी गर्मियाँ वो कार्य करती हैं, लेकिन जब सर्दी आती है, कारोबार में तो सर्दी होती ही नहीं है इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली वगैरह की जो सर्दी है, उत्तर भारत की सर्दी, वृंदावन की सर्दी, उस सर्दी में आप शक्कर को रख दीजिए, एक चींटी नहीं आती है, सर्दियों में वो बाहर नहीं निकलती, तो सर्दियों में उन्हें छुप कर रहना पड़ता है, अपने अपने रहते हैं जहाँ भी उन्होंने बनाए हुए हैं घरों में, और गर्मी सारी गर्मी में वो सर्दी के लिए इकट्ठा करती हैं, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सारी गर्मी में वो सर्दियों के लिए इकट्ठा करती हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो इंतज़ार करती हैं कि कब गर्मी हो और पहले गर्मी में ही हम बाहर जाएं। अर्थात जब सुख है तो दुख के लिए तैयारी करती हैं, गर्मी में वो उस समय की तैयारी करती हैं जब वो बाहर नहीं आ पाएंगी, दुख का समय, और जब दुख है अर्थात वो बाहर नहीं जा पा रहे, इतनी ठंड है, ठंड में वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उस समय वो सुख के दिनों की कामना करती हैं कि जैसे ही गर्मी, बस इंतज़ार करती हैं कि गर्मी आई, देखिए जैसे ही गर्मी होती है तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं, सर्दियों में चींटियाँ नहीं आती। तो इनसे हम सीख सकते, एक भक्त को ऐसे होना चाहिए, जब सुख हो तो उसको सहन करे, सहन करे अर्थात दुख की तैयारी करे, ये जान ले कि जैसे दुख क्षणिक है ऐसे सुख भी क्षणिक है, हमें बहुत प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए, जैसे एक भूखे व्यक्ति को बहुत समय बाद जब भोजन मिलता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भूल जाता है कि शायद अगले दिन फिर भूखा रहना पड़ेगा। तो एक भक्त को सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखना चाहिए। तो इसीलिए दूसरी चीज वो कहते हैं कि हमें सहनशीलता को सीखना है। तीसरी चीज वो कहते हैं जिज्ञासा, व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए। किस चीज की जिज्ञासा? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें खाने पीने सोने की जिज्ञासा नहीं करनी है, वो तो वैसे भी अपने कर्मों से हमें मिलने वाला है। आप जिज्ञासा कर भी लेंगे तो क्या लाभ है? मान लीजिए आपने बड़ी जिज्ञासा की, कैसे पैसे कमाऊं कैसे पैसे कमाऊं, लेकिन भाग्य में लिखा ही नहीं है पैसा, तो क्या लाभ है ऐसी जिज्ञासा का? खाने पीने सोने इस भौतिक जगत में बने रहने की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। भगवान से ये कामना नहीं करनी चाहिए कि मुझे मेरा जीवन बनाए रखिए, जो जीवन के लिए उपयोगी है, खाने पीने की वस्तु जीवन चलाने के लिए उसको दीजिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान से ये मांगता है तो अर्थात उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान से इन चीज़ों को मांगना भगवान पर अविश्वास दिखलाना है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं। भगवान को भागवत के 10वें स्कंद में भूत भावना कहा गया, सारे जीवों का पालन करते हैं वो। एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जन्म लेता है, क्या लेकर आता है? कुछ नहीं लाता, कपड़ा तक लेकर नहीं आता पहनने के लिए, क्या लेकर आता है? या ईंट पत्थर लाता है, सीमेंट लाता है, कुछ नहीं लाता। खाने के लिए भी कुछ लेकर नहीं आता, आते ही रोता है, और भगवान व्यवस्था करते हैं माँ के स्तनों में दूध को प्रदान करके। ये कहाँ से व्यवस्था होती है? ये भगवान की व्यवस्था। तो भगवान जानते हैं कि ये बालक जन्म लेगा, इसको खाने के लिए, उसको पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, व्यवस्था कर दी उन्होंने। बताइए कौन ऐसी व्यवस्था करते हैं? माँ ये व्यवस्था नहीं करती है, या पिता से ये व्यवस्था नहीं होती, ये व्यवस्था भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान जीव का, और जब माँ के गर्भ में होता है उस समय भी भगवान व्यवस्था करते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की है कि माँ के गर्भ में अंदर रहकर भी 9 महीने तक बालक पोषण पाता है, बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसा ही रहता, बढ़ता है, बढ़ता अर्थात उसको पोषण मिल रहा है उसके शरीर को। तो भगवान वहां भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए भगवान से अपने शरीर के पालन के लिए मांगना, ये भगवान पर अविश्वास दिखलाना है। जिज्ञासा करनी चाहिए हमें भक्ति की, हमें भगवान से मांगना चाहिए भगवान की सेवा, बस और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को ले लिया वो विद्या से परे है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के पास आकर भी केवल वही चीजों में पड़ा है तो फिर वो अविद्या में है। सच्ची विद्या ये है कि हम भगवान को जाने। कभी कभी विद्या अविद्या से ज्यादा खतरनाक होती है। साधारण अवस्था में अविद्या विद्या से खतरनाक या नीची मानी गई है, अविद्या को निम्न माना जाता है, विद्या को ऊंचा माना जाता है। लेकिन कभी कभी विद्या अविद्या से निम्न होती है, तुच्छ होती है। कौन सी विद्या? ईश्वर विहीन विद्या। ईश्वर विहीन विद्या अविद्या से निम्न है। अच्छा है वो स्थान जहां लोगों को शिक्षण नहीं है, उन्होंने कोई एमए बीए इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं किया, साधारण लोग हैं, स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, अच्छी है वो अविद्या। क्यों? भगवान को मानते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि भारत में आज भी किसान जो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हैं। वर्षा आती है तो कहते हैं भगवान की कृपा है, जब भगवान चाहेंगे वर्षा आएगी, अन्न उगेगा, ये उनका विश्वास है। लेकिन जो लोग पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास आ जाती हैं, वे भगवान को नकार देते हैं। ये इस तरह है कि जैसे सर्प होते हैं, वो सांप जिसके सर पर मणि होती है वो ज्यादा जहरीला होता है, खतरनाक होता है उस सांप से जिसके सर पर मणि नहीं है। इसी तरह इस जगत में जिसके सर पर बहुत सारी डिग्रियां हैं वो उस सांप की तरह हैं जिसके सर पर मणि है। क्यों? क्योंकि डिग्री लेते लेते भगवान से दूर चला गया, विषैला हो गया है वो। इसीलिए बहुत डिग्रियों को लेकर बहुत पढ़ाई कर फिर भगवान को नकार देता है। तो वो अविद्या है। सच्ची विद्या है भगवान की प्राप्ति। तो ऐसे वो कई चीजों को देते हैं, तपस्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए, हृदय में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, मैं और मेरे का अहम ममेति इस भाव में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इत्यादि, और भगवान का स्मरण। तो ये भक्ति के मार्ग देते हैं कि किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, और ये आवश्यक है। द्वेष रहित होना बहुत आवश्यक है, इसका वर्णन आगे भी कुछ श्लोकों में वो करते हैं। द्वेष नहीं होना चाहिए, हम सबके हृदय में प्रेम होना चाहिए, हमारे संबंध प्रेम पर आधारित होने चाहिए। जब तक हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है, कब तक? विभीषण को भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ रावण का अंतिम संस्कार करो, रावण मर चुका था। विभीषण ने मना कर दिया, कहा ये तो आपका विरोधी था, आपके प्रति अपराध किया इसने, इसको अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, राक्षस है ये। लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, कब तक द्वेष रहेगा? जब तक ये शरीर है, अब तो वो रहा नहीं, फिर द्वेष कैसा? हमें इससे बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ में जो लोग हैं वो हमें नहीं पता कब तक हमारे साथ रहेंगे, फिर द्वेष कैसा? जब तक हम द्वेष करते रहते हैं अच्छे संबंध को स्थापित नहीं करते, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तब हम शोक करते हैं कि हाय हाय मैंने उससे द्वेष किया, आज वो है नहीं, काश होता तो मैं क्षमा मांग सकता, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। इसीलिए जो हैं उनसे प्रेम करना सीखना चाहिए, जो हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्ति में आकर हमें ये सीखना चाहिए कि हम सब भगवान की सेवा में हैं, क्यों द्वेष करना? क्यों नहीं एक दूसरे से प्रेम से रहें, आदर से रहें, सम्मान से रहें? एक ऐसा परिवार हो जहां केवल प्रेम हो, व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष नहीं करे। हम छोटी छोटी बातों में द्वेष कर बैठते हैं, किसी ने कुछ कह दिया हमें द्वेष हो जाता है, आप जानते हैं जब द्वेष होता है तो उस व्यक्ति की हर बात खराब लगती है। मान लीजिए क्लास में आप बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और आप जिससे द्वेष कर रहे हैं वो भी बैठा है। अब वो व्यक्ति कुछ भी करेगा आपको गलत लगेगा। मान लीजिए वो प्रश्न पूछता है और आपके हृदय में द्वेष है तो आप उसे अच्छा नहीं मानेंगे, भले उसका कितना ही अच्छा प्रश्न हो, लेकिन आपके मन में आएगा देखो कितना दिखावा करना चाहता है, अपने आप को कितना बड़ा भक्त स्थापित करना चाहता है, इसीलिए प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन वही अगर द्वेष नहीं है हृदय में, आपके हृदय में आएगा कितना सुंदर प्रश्न पूछा है, मेरे मन में भी ये प्रश्न था, देखें क्या उत्तर आता है, मैं भी जानना चाहता। देखिए द्वेष, तो इसीलिए कम से कम भक्त समाज में हमें इस द्वेष को त्यागना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास बंद कीजिए। बहुत हुआ, बहुत श्रेष्ठ हो चुके हम, अब दूसरों को आगे बढ़ाना, और वो तब होगा जब हम द्वेष रहित होंगे। जब तक द्वेष है हम दूसरे को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, खींचेंगे पीछे लेकिन आगे नहीं बढ़ाएंगे। भक्ति मार्ग ये नहीं है, आध्यात्मिक जगत का ये भाव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक भक्त दूसरे भक्त को आगे बढ़ाता है। इवन स्वयं श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो भी किसी दूसरे भक्त को आगे करती हैं कि तुम जाओ कृष्ण की सेवा करो, और कृष्ण से कहती है ये मुझसे अच्छी सेवा करता है, आप इसकी सेवा स्वीकार कीजिए। ये आध्यात्मिक जगत का भाव है, और ऐसा परिवार, ऐसा घर शिला प्रभुपाद बनाना चाहते थे। इसीलिए ऋषभ देव के उपदेशों से हमें सीखना चाहिए कि जो भगवान की इच्छा है, ऋषभ देव स्वयं भगवान हैं, जो भगवान की इच्छा है, जो आचार्यों की इच्छा है और जो शास्त्रों का वर्णन है, हमें ऐसे एक परिवार का निर्माण करना है। समाज में कुछ भी क्यों ना होता रहे, लोग आपस में द्वेष करें, घृणा करें, एक दूसरे को मारें, एक दूसरे की हत्या करें, युद्ध करें, भक्त समाज में प्रेम बढ़ना चाहिए। हमें ऐसे प्रेम को उत्पन्न करना है जो अनुसूयवे, द्वेष से रहित है, इसमें कोई द्वेष नहीं। तो ऋषभ देव हमें उपदेश दे रहे हैं कि भक्ति बिना द्वेष के करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति द्वेष से भक्ति करता है तो वो तमोगुणी भक्ति कहलाती है। भक्ति के भी कई प्रकार हैं, और तमोगुणी भक्ति क्या है, हम भगवान के सामने आते प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुनिए, उस व्यक्ति का नाश कीजिए, ये तमोगुणी भक्ति है, द्वेष से परिपूर्ण। तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें सबको मिलकर एक ऐसा परिवार, एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ हर कोई प्रेम करे, हर कोई सुखी रह सके, एक दूसरे से द्वेष नहीं हो, एक दूसरे को देखकर घृणा नहीं आए, प्रेम का वातावरण, और फिर वो सारा प्रेम हम कृष्ण को अर्पण करें। ऐसे परिवार का निर्माण श्रील प्रभुपाद करना चाहते हैं। तो ऐसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे वर्णन करने के बाद फिर वो आगे के श्लोकों में करीब 15 से लेकर 18वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं कि कौन भक्ति सिखा सकते हैं, और भक्ति का लाभ जैसे हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि ग्रंथियां कट जाती हैं, तो भक्ति के कौन कौन शिक्षक हैं, उन्हें कैसे भक्ति सिखानी चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि एक राजा को, एक गुरु को, एक पिता को ये कर्तव्य है कि वो भक्ति सिखाए अपने आश्रितों को। और फिर वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो कहते हैं व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक उनकी शिक्षाओं में है, जहां वो कहते हैं कि व्यक्ति गुरु नहीं बने, व्यक्ति स्वजन नहीं बने, माता पिता नहीं बने, कब तक, जब तक अपने आश्रितों को वो मुक्त नहीं कर सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वो कहते हैं। तो इसलिए हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि इस अवस्था में रहकर हम ये जाने कि अगर हम कोई भी ऐसी स्थिति में हैं, जैसे वो श्लोक में कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यान् नमोचयेत् समुपैत्य मृत्युम्। गुरु नहीं बनना है, स्वजन नहीं बनना है, पिता नहीं बनना है, जननी नहीं बनना है, दैव नहीं बनना है, कुछ नहीं, जब तक आप अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटा नहीं सकते, छुटकारा नहीं दिला सकते। तो यहां इस बात को कहा गया, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि ऐसा गुरु जो अपने आश्रितों को, अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा पाए, भगवान की भक्ति नहीं प्रदान कर पाए, उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ऐसे गुरु को त्याग दिया बलि महाराज ने। बलि महाराज की कथा में हम देखते हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने कहा, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, झूठ बोलो, तुमने वचन दिया है, रुक जाओ, अभी तक जल नहीं छोड़ा है हाथ से, वापस ले लो अपना वचन, कुछ नहीं देना, ये विष्णु है। अर्थात भगवान के विरुद्ध सिखाने वाले गुरु थे, बलि महाराज ने त्याग दिया। गुरु न सस्या, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता जो भगवान से दूर ले जाए। स्वजनों न सस्या, व्यक्ति को स्वजन, स्वजन अर्थात ऐसा भी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए स्वजन जो हमें कृष्ण से या भगवान से दूर ले जाए। तो गुरु न सस्यात् स्वजनों न सस्यात् पिता न सस्यात्। पिता अर्थात ऐसा पिता ना हो, पिता का कर्तव्य है, इस श्लोक में कहा गया कि पिता का कर्तव्य है कि वो ज्ञान दे, भक्ति का ज्ञान, और जब तक वो भक्ति का ज्ञान नहीं देता है तो वो त्यागने योग्य है। तो गुरु को त्यागा बलि महाराज ने, स्वजनों को त्यागा ब्राह्मण पत्नियों ने, कृष्ण के मित्र आए ब्राह्मणों के पास, कहा कि बलराम जी और कृष्ण भूखे हैं, कुछ दीजिए खाने के लिए। ब्राह्मणों ने ध्यान तक नहीं दिया, वापस आ गए, बहुत भूख लगी है कृष्ण, कुछ करो। कृष्ण ने कहा ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो कृष्ण भूखे हैं। बालक गए, उन्होंने कहा ब्राह्मण पत्नियों से, कृष्ण भूखे हैं, उनके लिए कुछ दीजिए कृष्ण बलराम के लिए। ब्राह्मण पत्नियों ने जो भी यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की थी सब दे दी, जो बनाया था सारे व्यंजन, और दिए ही नहीं, खुद लेके चली कि आइए कृष्ण भूखे हैं, चलो ये सब यज्ञ गया खड्डे में। स्वजनों न सस्यात्, वो स्वजन जिन्होंने भगवान की भक्ति में बाधा डाली उन्होंने त्याग दिया ब्राह्मण पत्नी। ऐसे स्वजनों का कोई लाभ नहीं। तो गुरु न सस्यात् स्वजनों न सस्यात् पिता न सस्यात्। प्रहलाद महाराज ने त्याग दिया अपने ऐसे पिता को, कौन से पिता थे, विष्णु की भक्ति नहीं करना, विष्णु का नाम नहीं लेना, शत्रु है विष्णु। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उन्हीं को ज्ञान दे रहे थे। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियान सत्कृहान् हित्वात् पातं गृहंधकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। अपने ही पिता को कह रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ, देखिए अगर एक छोटा 5 साल का बालक आपको ऐसे कहे, पिता को कैसे लगेगा, अरे असुर श्रेष्ठ। और क्या कहा कि ये सब जो पकड़ कर रखा है असत ग्रहण, यही सब चिंता का कारण है आपका, छोड़िए। हितवात पातम गृह अंध कूपम, ये कहां अंधे कुएं में पड़े हुए हो घर में, अब बूढ़े हो गए, जाओ वन में, वनम गतो यद हरिमाश्रयेता, वन में जाओ और हरि का आश्रय लो। और क्रोध आ गया, तो ऐसे पिता को त्याग दिया, सुना नहीं उन्होंने, तो पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया। ऐसी जननी का क्या लाभ है जो उसे कृष्ण से दूर कर दे। उसने बड़ा प्रेम दिखाया था कैकेयी ने। कैकेयी ने दिखाया कि मेरे पुत्र के लिए मैंने राज्य ले लिया, अब मेरा पुत्र राजा बनेगा। भरत ने त्याग दिया ऐसी माता को। क्यों? क्योंकि कृष्ण से, भगवान श्री राम से दूर कर रही थी उसे। वो भूल गई कि भरत तो शाश्वत सेवक हैं श्री राम के, वो कभी छोड़ ही नहीं सकते श्री राम के चरणों को। इस जगत का ऐश्वर्य, राज्य, धन कुछ आकर्षित नहीं करता है भक्त को। ये भक्त के लक्षण है। भक्त को केवल श्री कृष्ण की सेवा आकर्षित करती है, उनके चरण कमल आकर्षित करते हैं। इतना बड़ा राज्य दिया था कैकेयी ने और कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। भरत ने त्याग दिया, और केवल राज्य नहीं, ऐसी माता को त्याग दिया उसने। जननी न सस्यात, दैवम न सस्यात। ऐसे देवता जो भगवान की भक्ति के विरोधी हों, उनको त्याग देना चाहिए। स्वयं कृष्ण ने दिखलाया, इंद्र की पूजा बंद करा दी। नंद महाराज बरसों से इंद्र की पूजा करते आए हैं, अरे इंद्र ही वर्षा देता है, लेकिन इंद्र की पूजा त्याग दी। और इंद्र ने क्या किया? विरोध किया। ऐसी पूजाओं को बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो दैवम न सस्यात, तो ऐसे अलग अलग अवस्था। पति न सस्यात, व्यक्ति को पति नहीं होना चाहिए अगर वो अपनी पत्नी को मुक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे पतियों को गोपियों ने त्याग दिया। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, कई घर वालों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, गोपियों को रोका उनके पतियों ने। गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कृष्ण को नहीं त्यागा। ये भक्ति है। तो इसीलिए यहां इस श्लोक में वो कहते हैं, गुरु न सस्यात, सजनो न सस्यात, दैवम न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। तो ये बनना नहीं चाहिए। तो ऐसे भक्ति के शिक्षकों का वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को हम अपने जीवन के केंद्र में रखें। और फिर आगे ये वर्णन करने के बाद फिर वो वर्णन लोगों अपने पुत्रों को कहते हैं कि आप सबको भरत के प्रति आकर्षण होना चाहिए, आप सब भरत को स्वीकारिए। उनके पुत्र हैं भरत, जिन्होंने राज्य किया, भरत महाराज, आगे उनका वर्णन आएगा आगे के अध्यायों में। तो आप सब भरत को स्वीकारिए। अभी यहां पर एक विरोधाभास है। अपनी शिक्षाओं के प्रारंभ में ऋषभ देव ने कहा, व्यक्ति को पारिवारिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और यहां कह रहे हैं कि ये तुम्हारा भाई है, इससे प्रेम करो, भरत से। तो क्यों? एक तरफ कहते हैं कि परिवार के व्यक्तियों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बंधन का कारण है, और अपने ही पुत्रों को वही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अपने भाई से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि उनका भाई एक भक्त है। एक ही परिवार में भगवान और भक्त दोनों प्रकट हुए हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों भरत को स्वीकारना है? क्योंकि भरत भक्त है भगवान का, ये वैष्णवों की बात सुनता है, इसीलिए इसको स्वीकारो। वैसे तो ऋषभ देव के सारे ही पुत्र शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी उनमें भरत को श्रेष्ठ कहा गया। बहुत महान भक्त हैं भरत। तो ऋषभ देव चाहते थे कि पृथ्वी पर एक भक्त राज्य करे, जैसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी पृथ्वी पर दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर राज्य करे, ताकि धर्म का राज्य स्थापित हो सके, सारी पृथ्वी पर धर्म फैल सके। तो इसीलिए ऋषभ देव की भी इच्छा थी कि भरत राज्य करे। तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों से कहा कि इसको स्वीकारो। और फिर उन्होंने वैष्णवों के महत्व का वर्णन किया, ब्राह्मणों का वर्णन किया, ब्राह्मण अर्थात भक्त भगवान के। और उन्होंने वर्णन किया प्रारंभ से कि इस जगत में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्राण नहीं है, जड़ पदार्थ। तो जड़ पदार्थ से लेकर ब्रह्मा जी तक का वर्णन उन्होंने किया, जैसे जड़ पदार्थ से वो श्रेष्ठ हैं जिनमें प्राण है, जैसे वृक्ष इत्यादि। लेकिन वृक्षों से कीड़े मकौड़े श्रेष्ठ हैं, कीड़े मकौड़ों से पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। फिर ऐसे वो वर्णन करते जा रहे हैं, आगे गंधर्वों का, किन्नरों का, देवताओं का, देवताओं से श्रेष्ठ इंद्र हैं, इंद्र से श्रेष्ठ ऊंचे लोकों में रहने वाले लोग हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं इसलिए ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। और अंत में वो कहते हैं, तो अब ब्रह्मा जी तक का वर्णन कर दिया, सबसे श्रेष्ठ इस जगत में, जड़ पदार्थ से शुरू किया और ब्रह्मा जी तक का वर्णन कर दिया कि वो श्रेष्ठ हैं। और फिर वो कहते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ब्राह्मण प्रिय हैं, वैष्णव प्रिय हैं, इसीलिए वो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। देखिए स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, जड़ पदार्थ है, पेड़ हैं, कीड़े मकौड़े, पशु पक्षी, फिर उसके बाद मनुष्य, फिर उसके बाद भूतों का वर्णन आता है, फिर उसके बाद गंधर्वों का, किन्नरों का, असुरों का, देवताओं का, इंद्र का, फिर इंद्र के ऊंचे लोकों का, फिर शिव जी का, और फिर ब्रह्मा जी का। लेकिन ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं उनके प्रति आसक्त हूं इसीलिए वो मुझे ज्यादा प्रिय है, वो श्रेष्ठ हैं। तो देखिए ब्राह्मणों की स्थिति। और फिर उनका वर्णन करते हैं भगवान कि आप अगर कोई यज्ञ करते हो, यज्ञ की अग्नि में, ऋषभदेव कहते हैं आप यज्ञ की अग्नि में कुछ डालते हो, हाँ वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उससे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना वो यज्ञ करने के बाद आप भक्तों को भोजन कराते हो, मैं उनके मुख से स्वीकार करता हूं, ब्राह्मणों के, वैष्णवों के मुख से मैं भोजन स्वीकार करता हूं। इसीलिए अगर यज्ञ करना है, यज्ञ की अग्नि में आहुति डालनी है, तो अच्छा है वैष्णवों को बुलाकर भोजन कराना, प्रसाद खिलाना, ये बड़ा यज्ञ है। ये स्वयं ऋषभदेव कहते हैं उससे मैं ज्यादा प्रसन्न हूं, ना कि आप बड़े बड़े यज्ञ करो, अग्नि में सारा चीजें डालो। वो भी यज्ञ की सही प्रक्रिया है, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे ज्यादा। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो वैष्णवों को खिला देना चाहिए, बस भगवान उनके मुख से खाते हैं। ये कहते हैं ऋषभदेव, मैं उनके मुख से खाता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को खिलाना चाहते हैं, कैसे खिलाएंगे? वैष्णवों को खिलाना, भगवान प्रसन्न। तो ऐसे उन्होंने वैष्णवों का वर्णन किया कि किस तरह से ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय हैं। और फिर उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं कि ऐसे ही प्रिय नहीं है वो मुझे, क्या गुण है वे ब्राह्मणों के, क्या लक्षण है। तो वो उनका वर्णन करते हैं कि ब्राह्मणों के गुणों में सबसे पहला है, वो वेदों को जानते हैं, अर्थात मेरी वाणी को जानते हैं, मेरे हृदय को जानते हैं, मैं क्या चाहता हूं ये वैष्णव जानते हैं। दूसरा वर्णन करते हैं उनके अंदर होना चाहिए शमः, दमः, तपः। शमः अर्थात अपने मन को वो नियंत्रित कर सकते हैं, दमः अर्थात अपनी इंद्रियों को वो नियंत्रित कर सकते हैं, तपः अर्थात वो तपस्या कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें भगवान का प्रिय होना है, वैष्णवता लानी है, तो हमें इन चीजों का पालन करना है। हमें दमः, हमें शमः, दमः, मन को नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि तपस्या, हम कल भी वर्णन कर रहे थे, भक्ति में अनिवार्य है। तो ऐसे वो कहते हैं। और फिर सत्यता, ये उनका एक लक्षण है, शमः, दमः, सत्य, सत्य उनका एक लक्षण है, वो सदैव सत्य के मार्ग पर रहते हैं। तो वैष्णव सदैव सत्य के मार्ग पर कैसे रहते हैं? क्योंकि वो परम सत्य भगवान के निकट हैं, इसीलिए हमेशा सत मार्ग पर रहते हैं, इसीलिए उनका संग सत संग कहा जाता है। जो सत मार्ग पर हैं उनका संग सत संग है, बाकी सब असत संग है। और फिर आगे उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान को उन्होंने लिया है उसका वो प्रचार करते हैं, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। भगवद गीता में भी भगवान इसी को कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये ज्ञान मैंने तुम्हें जो दिया है भगवद गीता, इसको जो प्रचार करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। और यहाँ ऋषभ देव भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो प्रचार करते हैं। और साथ ही साथ तितिक्षवा, तितिक्षा मतलब वो बहुत सहनशील हैं, ये ब्राह्मण का एक लक्षण है, ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो शरीर के कष्ट को सहन कर लेते हैं लेकिन मान अपमान अपमान को वो सहन नहीं कर सकते। ब्राह्मण शरीर के कष्ट को सहन नहीं कर सकता लेकिन अपमान बड़ी आसानी से सहन कर लेता। तो ये तितिक्षा है, सहनशील है। क्यों अपमान सहन कर लेता है? क्योंकि वो जानता मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा, क्या मान अपमान इस शरीर का। तो ऐसी अवस्था, ऐसे गुण होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें जीवात्मा और भगवान की स्थिति का ज्ञान होता है। तो अगर हम भगवान को प्रिय होना चाहते हैं, वैष्णव होना चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो भगवान को प्रिय हैं, हमें इन गुणों को लाना चाहिए अपने अंदर। द्वेष रहित होते हैं, इसलिए द्वेष को त्यागना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो मुझसे किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा की कामना नहीं करते हैं, केवल भक्ति में लगे रहते हैं, कुछ चीज इकट्ठा संग्रह नहीं करना चाहते हैं। हमारे जीवन में हम लोग प्रयास करते हैं कुछ संग्रह कर लूं, भक्ति में आने के बाद भी कुछ थोड़ा सा बना लूं, संग्रह करूं। ब्रह्मचारी भी थोड़ा संग्रह करना चाहते हैं, सन्यासी संग्रह करना चाहते हैं। ब्रह्मचारियों के कबट खोलिए जाकर तो बहुत सारा संग्रह रहता है, इतनी आवश्यकता नहीं है संग्रह की लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। गृहस्थ संग्रह करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं, वानप्रस्थ, सन्यासी, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उस संग्रह में उतना रखते हैं जितना शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बाकी भगवान पर विश्वास, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे वो वर्णन करते हैं और फिर वो करते हैं, फिर वो बहुत महत्वपूर्ण बात अपने पुत्रों को कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बात याद रखो, कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना। और क्यों नहीं करना? ये जान लेना कि मैं सब में हूं और मैं सब में हूं ये जानते हुए हर एक को आदर सम्मान देना, द्वेष नहीं करना किसी से, कितनी महत्वपूर्ण बात है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। हमें अगर सही दृष्टि में पंडित बनना है, विद्वान बनना है, भक्त बनना है तो इस चीज को समझिए, द्वेष रहित होना है। क्यों? हरेक में भगवान को देखना, हर चीज में भगवान को देखना है और उसे आदर सम्मान देना है। तब निवास जगत प्रणामे, जगत की हर वस्तु को प्रणाम करना है क्योंकि आपका निवास है उसमें। तो वो कहते हैं कि ऐसे तुम्हें रहना चाहिए और अगर ऐसी अवस्था में रहोगे, हमेशा द्वेष से रहित रहोगे, हर स्थिति में मुझे देखोगे, हर स्थान में मुझे देखकर आदर दोगे और अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओगे अर्थात भगवान की सेवा में लगाओगे तो कभी यमराज को नहीं देखोगे। ऋषभदेव कहते हैं कभी यमराज के दर्शन नहीं होंगे, अर्थात यमराज कुछ ज्ञान देने के लिए आए वो अलग बात है, लेकिन यमराज के दर्शन का अर्थ है कि कभी हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात हम नीच अवस्था में कभी नहीं गिरेंगे अगर हम ये कार्य करेंगे। तो क्या कार्य करना है? द्वेष रहित रहना है, हर स्थान में, हर व्यक्ति में, हर चीज में भगवान को देखना है और तीसरा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषभदेव कहते हैं इतना करोगे तो कभी यमराज के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसा ज्ञान देकर फिर आगे के अंतिम श्लोकों में वर्णन है कि कैसे उन्होंने भरत महाराज को बिठा दिया राजगद्दी पर और उस समय पूर्ण विरक्त हो गए। घर में जब रह रहे थे तब भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो पागल हो गए हैं, कोई उनको बाहरी चेतना नहीं रहती थी। कभी ऐसे ही नग्न घूमते रहते थे, कभी कहीं चले जाते थे, और फिर उन्होंने एक दिन घर त्याग दिया और अलग अलग स्थानों में चले गए, शहरों में, गांवों में, बगीचों में, राज्यों में, जहां जहां वो जाते और ऐसे ही घूमते थे। और इतना ही नहीं, घूमते थे तो लोग उनकी निंदा करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भगवान अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं कि जब उन्होंने घर त्याग दिया, जब वो ऐसे अवधूत की तरह रहने लगे, अवधूत मतलब कोई नियम नहीं पालन कर रहे हैं, केवल भगवान की भक्ति में उनका मन लगा, तो ऐसे वो लगे रहे। और उस समय उन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लोग अपमान करते थे उनका। वर्णन है भागवत में कि लोग पत्थर मारते थे, उनको बुरी बुरी बातें कहते थे, लोग उनके ऊपर मूत्र त्याग करते थे, लेकिन ऋषभ देव ने कभी कुछ नहीं कहा। ऋषभ देव ऐसे ही रहते थे, भगवान में लीन। हमें कम से कम ये तो सीख लेना चाहिए इससे कि अगर हम भगवान में अच्छी तरह लीन रहें तो मान अपमान से प्रभावित नहीं होंगे। भले हम इस स्थिति में ना आए कि कोई पत्थर मार रहा है, कुछ कर रहा है, अपमान कर रहा है, लेकिन कम से कम मान अपमान से प्रभावित ना हो। तो ऐसे ऋषभ देव रहने लगे, किसी चीज के प्रति उनकी आसक्ति नहीं। ऐसे रहते रहते फिर वो एक स्थान में चले गए। आगे वर्णन है कि उनको एक व्यक्ति उनकी नकल करने लगा, आगे कल वर्णन करेंगे, और जिसके द्वारा एक नया धर्म स्थापित हो गया। वो धर्म है जिसमें लोग कपड़े पहनकर, बिना कपड़े पहने अपने आप को सन्यासी कहते हैं, तो वो नकली धर्म है। इसका वर्णन भागवत में किया गया, कल इसका वर्णन करेंगे। तो ये ऋषभ देव को देखकर उनकी नकल करके जो किया गया, ऋषभ देव अपनी बाहरी चेतना खो बैठे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दर्शाया कि सन्यास लेना है तो वस्त्र त्याग देने चाहिए, निर्वस्त्र रहना चाहिए, नहीं, वो तो अपनी चेतना खो बैठे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या मैं कहाँ पड़ा हूँ। वो कहीं पड़े रहते थे अपने ही मलमूत्र में, वो चाहते थे कि लोग मेरे पास आए नहीं, इसीलिए एक जगह पड़े रहते, वहीं पर खाते, वहीं पर मल और मूत्र त्याग करते, और वही मलमूत्र उनके पूरे शरीर में लग जाता, तो कोई उनके पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन भागवत में वर्णन है 80 मील दूर तक उसकी सुगंध फैली थी, क्योंकि ऋषभ देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उनका मलमूत्र भी कुछ ऐसा नहीं था जो सब जगह बदबू फैला रहा है। उनके मलमूत्र के कारण सारे 80 मील एरिया में सुगंध फैल गई थी। ये है ऋषभ देव, भगवान के अवतार। तो ऐसे ऋषभ देव अवधूत की तरह रहने लगे, उनके वैराग्य का वर्णन किया गया। फिर वो उन्होंने एक अजागर वृत्ति, अजगर की तरह बस एक जगह पड़े रहना, कुछ मिल गया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, इस वृत्ति का पालन किया उन्होंने। तो इस तरह से इस अध्याय के अंत में ऋषभ देव के वैराग्य का वर्णन किया गया। अब अगले अध्याय में कल हम लोग सुनेंगे कि किस तरह ऋषभ देव ने अपने देह को त्यागा और किस तरह उनकी नकल करके एक नया धर्म स्थापित किया गया, इसका वर्णन कल हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। समय काफ़ी हो गया है, फिर भी अगर किसी के एकाध कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा। माइक दीजिए, ध्यान रखा करो। कौन? हाँ, उसका हाँ, जय, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान यमराज महाजन हैं, 12 महाजनों में से भगवान के शुद्ध भक्त, तो जो नरक में जाते हैं उनका दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन करके शुद्ध हो जाते होंगे तो फिर उन्हें नरक में क्यों रहना पड़ता है। दुर्योधन ने भगवान के खुद दर्शन किए, या महाजनों के नहीं, स्पष्ट सीधे भगवान के दर्शन किए साक्षात, लेकिन सुधरा नहीं, फिर भी विरोध किया, फिर भी युद्ध किया, मारने का, बंदी बनाने का प्रयास किया। तो जो भगवान के साक्षात दर्शन करके शुद्ध नहीं हुआ, इसका अर्थ ये है, हाँ अंतिम गति उसको अच्छी मिली, लेकिन इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को सही भाव में भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो जो लोग नरक में जाते हैं वे लोग यमराज को भक्त के रूप में नहीं देखते, उनके दर्शन उस रूप में नहीं करते, वे दर्शन करते हैं यमराज को एक अधिकारी के रूप में जिनका कार्य है दंड देना, इसलिए वो द्वेष करते हैं उनसे, ये हमें दंड देगा, द्वेष करते हैं। और जो भक्तों से द्वेष करता है वो मुक्त कैसे हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम भी भक्तों का संग करें, ये सोच के नहीं कि बस भक्तों का हो गया संग, भक्तों के संग में रहकर उनसे श्रवण करें, उनसे सुने, ये असली संग है, तो उस दृष्टि में हमें लाभ मिलेगा। फिर भी वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं तो निश्चित लाभ तो थोड़ा मिलता ही होगा। जैसे व्यक्ति हरि नाम लेता है तो हरि नाम लेगा तो लाभ होगा, लेकिन किसी को हरि नाम लेने का भौतिक लाभ होता है, किसी को मुक्ति मिलती है और किसी को कृष्ण प्रेम, तीनों में अंतर क्या है? भाव, किस भाव से वो नाम ले रहे हैं। इसी तरह भक्तों का संग बहुत से लोग करते हैं, कोई लोग निंदा करते हैं उनकी संग करके, कोई लोग उनके संग में रहकर भौतिक कार्यों को करते हैं, और कोई लोग उनके संग में रहकर भक्ति करते हैं, तो तीनों को अलग अलग लाभ होता है। ठीक है, यमराज नरक में ज्ञान देते हैं या क्या करते हैं? नहीं, वहाँ वो अपनी सेवा करते हैं, उनकी सेवा है लोगों को दंड देना, उनके उनके कार्यकलापों को देखकर कहाँ कहाँ कौन कहाँ जाएगा, तो वो अपनी सेवा भगवान के लिए वहाँ पर करते हैं, ये उनकी सेवा है। इसीलिए हालांकि एक महाजन के रूप में उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेवा है, तो सेवा करते समय ज्ञान नहीं दिया जाता। जैसे भी आपको ऑल्टर की सेवा दी जाए, आप वहाँ पर हैं और आप ऑल्टर की सेवा करते करते व्यासासन पर बैठकर प्रवचन नहीं दे सकते, या तो एक ऑल्टर की सेवा हो गई है। तो इसीलिए महाजन हैं तो जब वो एक सेवा के रूप में उसको करते हैं तब फिर केवल दंड देते हैं, और लेकिन जब ऐसा अवसर मिलता है धर्मराज के रूप में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, विदुर के रूप में आए ज्ञान देने के लिए। हाँ, कौन? विदुर? यमराज नरक में नहीं है। नहीं नहीं, ज्ञान बिल्कुल नरक में कोई रेडी नहीं सुनने के लिए, ज्ञान क्या ज्ञान देंगे वहां तो केवल। अब आपको समझो, बड़ी सी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसमें आपको उबाला जा रहा है, आप उबल रहे हो, और आपको आके कोई ज्ञान दे बेटा हरि नाम लो, क्या हरि नाम लेगा उसके? यहाँ से उबल रहा है, यहाँ से उबल रहा है, सारे शरीर को फाड़ा जा रहा है, उसकी आँखों को निकाला जा रहा है, आंतड़ियों को निकाला जा रहा है, उस समय क्या ज्ञान सुनेगा? वो स्थान नहीं ज्ञान के लिए, इसलिए यमराज नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान के ऐसे भक्त आ जाते हैं जो भक्त के रूप में वहाँ आते हैं तो उनको लाभ मिलता है। जैसे एक समय जनक महाराज वहाँ चले गए थे, तो उस समय वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने प्रार्थना की जनक महाराज से, आप जाइए नहीं, आप यहीं खड़े रहिए, आपके शरीर से छूकर जो हवा आ रही है उससे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ रहिए। तो इसीलिए ऐसे कभी कभी जब भक्त के रूप में, कि ना यमराज जी अपने आप को वहाँ भक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं कि ठीक है आप सबको मेरा दर्शन हुआ सब मुक्त हो गए, क्योंकि वहाँ उस सेवक के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, दंड देना उनकी सेवा। ठीक है, यस। कोई अंतर नहीं है, माधवेंद्रपुरी के बाहरी भाव मतलब जो चेतना थी वो थी, मतलब इन सेंस वो ध्यान रखते थे कि कैसे रह रहे हैं, और उनका उद्देश्य भगवान की सेवा करना था, तो सेवा की दृष्टि से उन्होंने अजागर वृत्ति को स्वीकार किया था। सेवा करते रहते थे, कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं है तो अपनी सेवा चालू। और ऋषभदेव ने जो अजागर वृत्ति ली उन्होंने सेवा के लिए नहीं ली, उन्होंने कोई सेवा नहीं की, भगवान तो स्वयं अवतार हैं तो उन्होंने भगवान की सेवा नहीं की, लेकिन उन्होंने उस अजागर वृत्ति को लिया और कहीं पड़े रहते थे, बस कुछ मिल गया खाया, नहीं मिला तो ऐसे ही पड़े। तो वृत्ति की दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि उन्होंने भी उसी वृत्ति का पालन किया, इन्होंने वृत्ति का, लेकिन बाहरी दृष्टि से थोड़ा बहुत भेद है। माधवेंद्रपुरी ने ऐसे नहीं किया जैसे ऋषभदेव ने किया कि पड़े हैं मलमूत्र में गिरे हुए हैं, वो माधवेंद्रपुरी ने नहीं किया, क्योंकि उनके लिए कुछ सेवा थी भगवान ने रखी थी तो उनको सेवा करनी थी, ठीक है, लेकिन भाव वही था। यस
ब्राह्मण लोग अपमान अपमान दोषा लेते हैं और क्षत्रिय मान अपमान को नहीं सहन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग आत्मा के स्तर पर नहीं जाते, क्षत्रिय लोग नहीं जाते।
क्षत्रिय आत्मा के स्तर पर
जी नहीं रहते,
बिल्कुल नहीं रहते, हर क्षत्रिय नहीं। जिन क्षत्रियों में से, जिन राजाओं में से जो आत्मा के स्तर पर होता है उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। तो क्षत्रियों में हर क्षत्रिय नहीं, लेकिन हर ब्राह्मण को होना अनिवार्य है, तब ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय को होना अनिवार्य नहीं है कि क्षत्रिय को आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, ब्राह्मण को होना चाहिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। तो इसीलिए क्षत्रिय जो होते हैं वो इसीलिए तो युद्ध कर पाते हैं ना। अब युद्ध में मार में जाएंगे, आत्मा के स्तर पर हैं, हर एरिया में भगवान को देख रहे हैं, तो तलवार कैसे चलाएंगे, है ना, तीर कैसे चलाएंगे, मारने से पहले बोलेंगे अरे अरे आपके हृदय में भगवान है, दंडवत प्रणाम, वो तब तक गला काट के चला जाएगा सामने वाला, क्योंकि सामने वाला उस स्तर पर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आज दोपहर से जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान की कृष्ण लीला, श्री कृष्ण की लीला को प्रारंभ करेंगे, तो आज से जन्म की कथा होगी आज और सोमवार शाम को, फिर अगले रविवार सोमवार शाम, ऐसे जन्माष्टमी तक ये कथा चलती रहेगी। तो आज से कृष्ण कथा दोपहर में प्रारंभ कर रहे हैं। हरे कृष्ण।